आज का प्रातः क्लास है एक ग्यारह 1966 रिकॉर्ड है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। ओम शांति। भारत खास और दुनिया ये जानते ही नहीं है कि बेहद का बाप निवृत्ति मार्ग वाला है या प्रवृत्ति मार्ग वाला है। उनको ये मालूम ही नहीं है कि बाप यहाँ भारत में आते हैं, भारत में आते हैं तो बच्चा और बच्ची कह करके बुलाना पड़ता है, क्योंकि दिखलाते ही हैं उनको। उनको कहा भी भारत में ऐसे ही जाता है, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। तो देखो उनको गृहस्थी बनाए देते हैं ना, ये अनेक प्रकार के संबंध गृहस्थी में होते हैं या निवृत्ति मार्ग में होते हैं। तो देखो ये रूहानी बाप इतने दिनों तक तो ऊपर निवृत्ति मार्ग में रहते। कितने दिनों तक? और जब यहाँ आते हैं भारत में तो जैसे गृहस्थी मार्ग में चले जाते हैं। वहाँ ऊपर में रहते हैं तो एक ही संबंध है, तुम सब आत्मा आत्मा ज्योति बिंदु आपस में भाई भाई, और तुम्हारा बाप एक। तो बाप और बच्चे का संबंध होता है और दूसरे कोई संबंध नहीं होते। और यहाँ आता हूँ भारत में तो अनेक प्रकार के संबंध जोड़ता हूँ, जैसे कि गृहस्थी मार्ग में चले आते हैं वहाँ परम धाम में है तो मालूम नहीं है बच्चों को, वहाँ तो सिर्फ ऐसे ही कहते हैं, जानते हैं कि सोल वर्ल्ड में आत्माएं निराकार हैं और निराकार आत्माओं का बाप भी निराकार है, भले उसका आकार है शिव का आकार है, परंतु उस आकारी के आकारी वतन में कोई सूक्ष्म बच्चे तो है नहीं। अगर हैं तो बच्चे सभी आत्माएं हैं, इसलिए सभी आत्माएं एक जैसी है तो समझते हैं कि सभी एक जैसे परमात्मा हैं। आत्माएं भी बिंदु और परमात्मा भी बिंदु, आत्माएं भी निराकार तो परमात्मा भी निराकार, क्योंकि सबका एक जैसा बिंदी रूप है तो बिंदु रूप आत्मा का भी है तो परमात्मा का भी है। तो गृहस्थी जो गाते आते हैं, त्वमेव माता च पिता बंधु सखा, उन अनेक संबंधों को सन्यासी तो नहीं मानते, वो तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले। वो अपने जीवन में प्रवृत्ति को पक्का करके रखते हैं, रखते हैं है? पक्का निभाते हैं, नहीं निभाते। और बाप तो पक्का निभाते। तो देखो, दुनिया के आम लोग इस बात को नहीं जानते, भारतवासी जानते हैं। क्या है कि वो परमपिता परमात्मा प्रवृत्ति मार्ग में भारत में आते हैं और अनेक प्रकार के गृहस्थी में संबंध निभाते हैं। वो तो कहते हैं ब्रह्मलोक, अभी ब्रह्म कोई प्रवृत्ति मार्ग वाला तो कोई होता ही नहीं है। क्योंकि ब्रह्म तो है ही महत्तत्व, रहने का स्थान है, उनको ये मालूम ही नहीं है। किनको है? उनको कह के दूर क्यों कर दिया? हाँ, दुनिया के जो और धर्म वाले हैं, तुम तो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हो, इसलिए तुमको तो मालूम है कि ब्रह्मा कहो, ब्रह्मा कहो, महत्तत्व है, तत्व जड़ होता है या चैतन्य होता है? है जड़ होता है। ब्रह्म भी महत्तत्व, ब्रह्मा भी जड़त्वमयी बुद्धि। तो शास्त्रों में ब्रह्मा को क्या नाम दिया है? है टाइटलधारी प्रजापिता प्रजापति ब्रह्मा कहते हैं ना, तो जड़त्व ही बुद्धि वाला है। ये बुद्धि चैतन्य है, है? कहते हैं कि पार्वती का पिता था, क्या नाम? हिमवान। හේම මනේ හේම මනේ බර හිමාලය බරස් කා ඝර බරස් පානී කී තරේ ज्ञान जल की तरह बहने वाली होती है या जाम होती है? जाम होती है। तो देखो ब्रह्मा कहो ब्रह्म कहो बुद्धि से जाम है, बुद्धि चलाए माने है या जड़त्व में ही बुद्धि है? है मनन चिंतन मंथन चलता है नहीं चलता? अभी वो बात अभी अभी माने कभी संगम युग में जब ये वाणी चल रही है तभी छाछठ अभी वो इनको नहीं कहेंगे क्या त्वमेव माता च पिता त्वमेव किनको इनको इनको कह के किसको इशारा करते थे हैं ब्रह्मा को इनको नहीं कहेंगे कि इनके साथ सर्व संबंध है तुमेव माता च पिता बंधु सखा ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्म कोई माता पिता है बंधु है सखा ऐसे तो कहेंगे ही नहीं तो देखो उनका मार्ग ही अलग है इनको कह के बाजू में कर दिया और उनकी गोद में इनकी गोद में जो खेलते हैं गोद कहो कोख कहो कैसे ब्राह्मण हुए कुख वंशावली या मुख वंशावली कुख वंशावली उनका मार्ग ही अलग है इनकी गोद में कौन कौन खेलते हैं है? अरे चंद्रमा की गोद में ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की गोद में कौन कौन खेलते हैं चंद्रवंशी खेलते हैं इस्लाम वंशी भी खेलते हैं बौद्धी क्रिश्चियन वगैरह वगैरह सब धर्म वाले जो भी हैं सब इनकी गोद में खेलते हैं जो भी दुनिया वाले हैं उनका बिल्कुल मार्ग ही अलग है वो प्रवृत्ति को अपनाने वाले धर्म हैं या प्रवृत्ति को तोड़ने वाले धर्म हैं है? डाइवोर्स आइवोर्स देते हैं कि नहीं देते हैं ना और बाप बाप जिसको एक बार अपना लेते हैं उनको छोड़ते हैं क्या नहीं छोड़ते तो देखो उनका मार्ग अलग है बिल्कुल अलग है जो गृहस्थी मार्ग में है प्रवृत्ति मार्ग में है वो ये सभी कहते हैं उनकी महिमा अलग है सभी मंदिरों में उन देवताओं की महिमा अलग है भले भूल के कारण उनको भी कह देते हैं जा करके कहेंगे तुमेव माता च पिता बंधु सखा इनको भी जाकर कहेंगे देवताओं को राम सीता के मंदिर में जाएंगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो भूल के कारण इनको भी कह देते हैं क्या, तुमेव माता च पिता तुमेव, कह देते हैं अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, कितने नाम दे दिए। अच्युतम माने च्युत माने ऊपर से नीचे गिरे, जैसे छत चूती है ना, तो अच्युतम आ माने नहीं, च्युतम माने जो नीचे न गिरे। तो बताओ क्या देवताएं ऊपर से नीचे नहीं गिरते है? राम कृष्ण हो चाहे लक्ष्मी नारायण हो, वो ऊपर से नीचे कभी नहीं गिरते, सत्युग से गिर करके सत्य युग से गिर करके झूठ युग कलयुग में नहीं आते, आते हैं। तो फिर उनको अच्युतम क्यों कह देते हैं भक्त लोग? लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जावेंगे, राम सीता के मंदिर में जावेंगे, कह देंगे अच्युतम, झूठ कहते हैं या सच्चा कहते हैं है? क्या कहते हैं? झूठा कहते हैं। वास्तव में अच्युतम आत्मा कौन है? है जो ऊपर से कभी नीचे नहीं चूता, नीचे नहीं गिरता है, शिव बाप बिंदी है, शिव बाप या शिव बाबा, अगर कहें शिव बाप तो उसके तो नीचे गिरने ऊपर उठने का सवाल ही नहीं। जब साकार में आत्मा होती है तो कहा जाता है पतित हुआ, नीचे गिरा ऊपर उठा। तो बताओ शिव के लिए ये गायन कब का है, कौन से युग का गायन है? है संगम युग का गायन है। क्या गायन है? अच्युतम, वो ऊंची स्टेज से कभी नीचे नहीं गिरता। पतित दुनिया में आता है, पतित तने में आता है, है फिर भी उसको संघ का रंग नहीं लगता, और बाकी सब धर्म पिताओं को महात्माओं को इस दुनिया में आने के बाद संघ का रंग लगता है या नहीं लगता है? लगता है। तो नीचे गिरते हैं या ऊपर उठते हैं? हैं? सब नीचे गिरते हैं। तो ये गायन अच्युतम शिव बाबा का नहीं है क्या? शिव बाबा का ये गायन नहीं हो सकता कि वो ऊपर से नीचे गिरे। और शिव बाबा किसे कहा जाता है? है शिव कहेंगे, वो तो बिंदी का ही नाम है, वो कहते हैं मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, मेरे शरीर मुझे है ही नहीं, मेरी आत्मा का नाम शिव है, और दुनिया में जो भी आत्माएं हैं उनके शरीर का नाम पड़ता है कि नहीं? तो जिनके शरीर का नाम पड़ता है वो आत्माएं पांच जड़ तत्वों के कनेक्शन में आती हैं या नहीं आती हैं? आती है ना। और उन पांच जड़ तत्वों से बनी हुई जो देह है वो देह विनाशी है या अविनाशी है? है देह विनाशी है। तो विनाशी के संग में आकर के दुनिया की सभी आत्माएं नीचे गिरती हैं, संग के रंग में आकर नीचे जरूर गिरती है। और मैं जिसे अच्युतम कहा जाता है वो उनके संग के रंग में आकर के भी नीचे नहीं गिरता, चाहे कितने भी संबंध जोड़ूं। क्या बाप का जो संबंध है, जो प्रवृत्ति है, वो एक दो चार आठ के साथ है कि बेहद की प्रवृत्ति वाला है? हैं? वो तो बेहद की प्रवृत्ति वाला है। और जितनी मनुष्य आत्माएं हैं उनकी सबकी हद की प्रवृत्ति है। बच्चे भी अगर उनके हैं, मान लो क्राइस्ट है, क्राइस्ट को 200-250 करोड़ बच्चे हैं, जिनसे पूछो तुम्हारा बाप कौन, तो क्या कहेंगे? अपने धर्म पिता का नाम बताएंगे कि नहीं है? बताएंगे। तो 200-250 करोड़ का बाप है, फिर भी उसको हद का बाप कहेंगे या बेहद का बाप कहेंगे? हद का बाप कहेंगे, क्योंकि दुनिया में तो, इस बेहद की दुनिया में तो बेहद 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उन सब का बाप इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्या अगर है तो वो ही है जो मनुष्यों का बाप कहा जाता है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहा जाता है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप वो ही है जो अंत में आकर के एकदम पतित कामी कांटा बनता है। इस पतित दुनिया में मैं उसमें प्रवेश करता हूं तो भी मैं पतित बनता हूं या नहीं बनता हूं? पतित नहीं बनता हूं। मेरी जो प्योरिटी की पावर है, जिसके लिए मुझे एवर प्योर कहा जाता है, तो वो एवर प्योरिटी का प्रूफ परमधाम में मिलता है या इस सृष्टि में आकर के मिलता है? कहाँ मिलेगा? इस सृष्टि पर मिलता है। मैं जब इस सृष्टि पर आता हूँ, पतित दुनिया में आता हूँ, पतित तन में आता हूँ, पतितों के संबंध में आता हूँ, अनेक प्रकार के संबंध में आता हूँ, और संबंध सम्माने संपूर्ण, बंध माने बंधन, और संबंध जो हैं वो इंद्रियों से जोड़े जाते हैं या बिना इंद्रियों के जोड़े जाते हैं? इंद्रियों के साथ ही जोड़े जाते हैं। उन इंद्रियों के संबंध में अनेकों के साथ आने के बावजूद भी मेरी प्योरिटी खंडित तो होती है या नहीं होती है? नहीं होती है। तो देखो, जिसे सत्ता कहा जाता है, क्या गॉड को क्या कहते हैं? गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। तो जो सत्य है, जिसके लिए मनुष्यों की लिखी हुई गीता में भी कहा, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता, और जो असत्य है, जो झूठा है, वो कभी टिकता है या बखड़ा होता है? बखड़ा होता है। जैसे तुम ज्ञान सूर्य के बच्चे, बल कलयुग में पतित बनते हो, फिर भी जो ब्रह्मा की गोद में खेलने वाले हैं और कुहवंशावली ब्राह्मण होने के कारण ब्रह्मा के मुख से निकले हुई ज्ञान सूर्य की वाणी को नहीं पकड़ पाते, वो कमजोर आत्माएं रह जाती हैं या पावरफुल बनती हैं? कमजोर रह जाती है। कमजोर आत्माएं वो सतयुग में कम कलाओं वाली नारायण बनते हैं या 16 कला संपूर्ण नारायण बनते हैं? कम कला वाले नारायण बनते हैं। और वो जो कमी उनमें रह जाती है वो द्वापर युग से फिर प्रकट हो जाती है। वो कमजोरी उनको और धर्मों में कन्वर्ट करके ले जाती है। कौन सी कमजोरी? जो सत्य भाव संगम युग में आता है उसकी सुनाई हुई सच्चाई को पकड़ नहीं पाते। सत्य ज्ञान जो है वो सतगुरु से ले नहीं पाते हैं। वो ही आत्माएं द्वापर युग से कलयुग के अंत तक और धर्मों में कन्वर्ट हो जाती हैं। वो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं औरों के संग के रंग में ज्यादा आएंगी, ज्यादा नीचे गिरेंगी या कम गिरेंगी? ज्यादा नीचे गिरते हैं। मिसाल के तौर पर इब्राहिम आया, इस्लाम धर्म स्थापन किया, इस्लाम धर्म स्थापन करने वाला इब्राहिम स्वयं स्थिति में टिकने वाला था, स्व माने आत्मा, आत्मा माने ज्योति बिंदु, ज्योति बिंदु की स्थिति में टिकने वाला था नहीं? तुमको बाप ने बताया, क्या बताया? स्वधर्मे निदनम श्रेय, तुम्हारी जो आत्मा का धर्म है उसमें टिकना श्रेष्ठ है। इसके अलावा जो भी धारणाओं में टिकने वाले हैं वो उतने श्रेष्ठ नहीं है, कहेंगे नंबरवार भ्रष्ट है। देखो तुम आत्मिक स्थिति में टिकते हो तो आत्मिक स्थिति में टिकने वाली आत्माएं वाइब्रेशन जास्ती मजबूत बनाएंगी, या इंद्रियों की स्थिति में टिकने वाली आत्माएं जास्ती पावरफुल वाइब्रेशन बनाएंगी? है आत्मिक स्थिति में टिकने वाले तुम बच्चे जो लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाया है, लक्ष्मी नारायण एक दूसरे को ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा रस लेते हुए नीचे गिरते हैं या नहीं गिरते हैं? लक्ष्मी नारायण के चित्र में जो ज्ञान के वलय में दिखाए हुए लक्ष्मी नारायण है, वो ज्ञान की रोशनी का वलय जो दिखाया है उनकी ज्ञान की दुनिया है, इसलिए उनका नाम ही पड़ता है नारायण। नार माने जल, ज्ञान जल, आयन माने घर, कहाँ रहते हैं? ज्ञानी जल ही उनका घर है। तो जो ज्ञान जल उनका घर है वो मन बुद्धि के आधार का आधार पर वहां रहने वाले हैं या दृष्टि की रचना रहने वाले हैं? जो संगम की लक्ष्मी नारायण दिखाए हैं ज्ञान वलय के अंदर, वो आंखों की रचना लेने वाले हैं या मन बुद्धि की रचना लेने वाले हैं? है मन बुद्धि की रचना लेने वाले हैं। तो वो दुनिया का वातावरण मजबूत बनाएंगे या इंद्रियों की रचना लेने वाले दुनिया का वातावरण मजबूत बनाएंगे? कौन मजबूत बनाएंगे, कौन कमजोर बनाएंगे? है जो मनसा को कंट्रोल करते हैं, बुद्धि को एकाग्र करते हैं, वो दुनिया का वातावरण ऐसा मजबूत बनाते हैं कि प्रकृति के पांच जड़ तत्वों को भी सात्य को बना देते हैं। संगम भी लक्ष्मी नारायण कौन सा सुख ले रहे हैं? ध्यान से देखो उनको, है मन बुद्धि का सुख, इंद्रिय सुख में रमे हुए हैं या ज्ञान इंद्रियों कर्म इंद्रियों के सुख में रमण कर रहे हैं? है ज्ञान इंद्रियों के सुख में, आंखें हैं ज्ञान इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ, उन आँखों का रस ले रहे हैं, देखो ध्यान से, है आँखों का रस नहीं ले रहे। तो संगम युग में लगातार उनकी चढ़ती कला रहती है या गिरती कला में भी आते हैं? चढ़ती कला है, 16 कला संपूर्ण से भी ऊपर की कला, क्योंकि उनका जो बाप है कौन है? सूर्यवंशियों का बाप कौन है? है ज्ञान सूर्य। तो सूर्य कलाओं में बंधा हुआ होता है या कलातीत होता है? है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी कहा गया है। माना वो जब इस सृष्टि पर आता है तो जिस मुकर्रर मनुष्य तन में प्रवेश करता है उसको कैसा बनाता है? आप समान कलातीत और सारी दुनिया का कल्याणकारी बाप बनाता है, सारी दुनिया उसे स्वीकार करती है। तो ऐसी स्टेज बनाने वाला बाप हमको सदाकाल की चढ़ती कला में ले जाने वाला है। उसके बाद सतयुग का प्रारंभ होता है, उसमें पहला जन्म किसका होता है? है राधा कृष्ण का होता है। लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे जो लक्ष्मी नारायण नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनते हैं, उनके नीचे राधा कृष्ण का चित्र दिखाया हुआ है, दिखाया ना? वो आंखों का रस ले रहे हैं या मन बुद्धि का रस ले रहे हैं? इंद्रियों का रस ले रहे हैं। तो इंद्रियों की रसना लेने से जो सृष्टि की पैदाइश करते हैं वो सृष्टि नीचे जाने वाली बनेगी या ऊंची जाने वाली बनेगी? है नीचे जाने वाली बनती है। कृष्ण के बाद राधा के बाद जो भी आत्माएं परम धाम से नीचे उतरती है वो उत्तरोत्तर राधा कृष्ण के साथ ही साथ उतरती कला वाली होती जाती है या कला स्थिर रहती है? है पहले जन्म में ही, पहले जन्म के अंतिम छोर तक उन आत्माओं की चौथाई कला कम हो जाती है। हो गई ना? कारण क्या हुआ है? इंद्रियों का सुख लिया, भले श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख लिया फिर भी वो इंद्रियों का सुख लेने से सृष्टि तो बढ़ती है लेकिन नीचे उतरती है या ऊपर चढ़ती है? है नीचे उतरती है। नीचे उतरती है जो अच्छे से अच्छा पहला पत्ता है, अव्वल नंबर का पत्ता मनुष्य सृष्टि का, वो ही नीचे उतरता है। तो जो दूसरे 500-700 करोड़ पत्ते हैं उनका क्या हाल होगा? है वो और भी नीची स्टेज वाले होंगे या ऊंची स्टेज वाले होंगे? है नीची स्टेज वाले होंगे। तो देखो उनको कहा जाता है उतरती हुई कलाओं वाले। कृष्ण है पहला नंबर का पत्ता जो संगम युग में ब्रह्मा का पार्ट बजाता है। ब्रह्मा वाली आत्मा, वो आत्मा अपने पुरुषार्थी जीवन में ऊंची उठती है, विश्व का मालिक बनती है, जो बाप बनाने आया। बाप कहते हैं मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को आप समान बनाकर जाता हूं। तो बनती है? है नहीं बनती है? क्यों नहीं बनती? कारण क्या हुआ? है कारण ये हुआ कि बच्चा बुद्धि कहो जड़त्वमयी बुद्धि कहो, वो जड़त्वमयी बुद्धि भगवान बाप की मुख से निकली हुई बातों को पकड़ नहीं पाती गहराई से, और तुम बच्चे पकड़ लेते हो, क्या पकड़ लेते हो? तुम्हारे उन बातों को गहराई से पकड़ने के कारण तुम बच्चे जन्म जन्मांतर ज्यादा सुख भोगेंगे, या जो नहीं पकड़ पाते हैं वो ज्यादा सुख भोगेंगे? है ज्यादा सुख कौन भोगेंगे? जो पकड़ते हैं वो ज्यादा सुख भोगते हैं, और जो नहीं पकड़ते वो ज्यादा सुख नहीं भोगेंगे। अच्छा, फिर जो जितना ऊंचा उठता है वो उतना ही नीचे गिरता है या नहीं गिरता है? हैं? नीचे जरूर गिरता है। तो देखो, तुम बच्चे अंतिम जन्म में जा करके नीचे गिरते हो या नहीं गिरते हो? क्यों गिरते हो? है नहीं, तो कारण क्या है जो तुम नीचे गिरते हो? तुमने तो ऊंची स्टेज का ज्ञान लिया ना, है ज्ञान का झूला झूला है ना, तुमने कोई देह का झूला थोड़ा ही झूला है, ज्ञान के झूले में झूलते हो, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो, तो तुम नीचे क्यों गिरते हो? है नहीं, तुम बच्चे एक धर्म के कल्याणकारी रूप में निमित्त बनते हो, या सारी दुनिया के सब धर्मों के फॉलोअर्स के कल्याणकारी के रूप में रहते हो, खासकर संगम युग में? है एक धर्म के कल्याणकारी बनते हो, एक धर्म वालों को, एक धर्म के फॉलोअर्स को कल्याण की दृष्टि से देखते हो, और सबको टेढ़ी नजर से इनको गड्ढे में चले जाए? हैं? हाँ, तुम्हारी जो ज्ञान की दृष्टि है वो आत्मिक दृष्टि बन जाती है, और आत्मिक दृष्टि बनने के कारण तुम सारी दुनिया को कल्याणकारी दृष्टि से देखते हो, क्योंकि तुम कल्याणकारी बाप के अव्वल नंबर के बच्चे। अल्लाह अव्वल दीन ने आकर के जो अव्वल नंबर धर्म स्थापन किया, उस धर्म के तुम भांति हो, तो तुम्हारे अंदर संकल्पों के खून में वो रग भरी हुई है, क्या सारे संसार का कल्याण करना है, सिर्फ अपने देह के संबंधियों का नहीं, क्या देह के संबंधियों का नहीं, अपने धर्म के जो पक्के सूर्यवंशी हैं उनका ही नहीं, सारी दुनिया का कल्याण करने वाले। अच्छा, जब सारी दुनिया के कल्याण करने में लगेंगे तो उनके संसर्ग संपर्क में आना पड़ेगा या नहीं आना पड़ेगा? हैं? आना पड़ेगा ना, जब उनके संसर्ग संपर्क में आएंगे, संग के रंग में आएंगे, तो नीचे गिरेंगे या नहीं गिरेंगे? हैं? नीचे गिरेंगे ना। देखो, एक मिसाल देते हैं, तुम जो सूर्यवंशी बच्चे रुद्रमाला के मणके कहे जाते हो, रुद्र को भगवान कहा जाता है, रौद्र रूप धारण करने वाला, इतना रौद्र रूप धारण करता है कि सारी दुनिया के सब धर्मों के जो न सुधरने वाले बच्चे हैं उन सबका खात्मा करा देता है। कितना भयंकर रूप धारण करता है। तो तुम ऐसे बाप के रुद्र के बच्चे रुद्रगण हो, और रुद्रगण बच्चे सारी दुनिया के संसर्ग संपर्क संबंध में आते हो। जब आते हो तो संग का रंग भी लगता है, जैसे तुम्हारा बाप मनुष्य शक्ति का बाप कौन है? सारी मनुष्य शक्ति का बाप है, कोई है या नहीं? कौन? प्रजापिता। तो जो प्रजापिता जिसको बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज विष्णु या लक्ष्मी नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। तो गॉड के नीचे एक होगा नेक्स्ट या चार चार नेक्स्ट होंगे? है एक ही होगा। इसका मतलब टाइम टू टाइम पार्ट बजाने वाली ये आत्मा है, क्योंकि काम के आधार पर नाम पड़ता है। तो जिस समय इन आत्माओं ने ये पार्ट बजाया है तो उस समय उनके ये नाम पड़ गए। क्या? समयुगी कृष्ण, शंकर, नारायण, प्रजापिता। ऐसा सारी दुनिया में 500-700 करोड़ प्रजा है ना, उस सारी प्रजा पतित प्रजा का पिता, सारी प्रजा के मुकाबले जास्ती पतित होगा या कम पतित होगा? है जास्ती पतित। तो उसको सबसे जास्ती संग का रंग लगना चाहिए या कम लगना चाहिए? है सबसे जास्ती संग का रंग लगना चाहिए। और जब सबसे जास्ती संग का रंग उस बीज को लगता है जिसके लिए ये गायन है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, क्या जो बीज होता है उसकी क्या खासियत बताई? कि वो मिट्टी में अपने को रिद मिला देता है, मिलाए देता है, और उसके बाद ये सारा संसार क्या बन जाता है? गुलजार बन जाता है। गुले गुलजार माने फूलों का, सुखदाइयों का बगीचा बन जाता है। बनता है कि नहीं? स्वर्ग बन जाता है। ऐसे ही नंबरवार तुम बच्चे क्या पार्ट बजाते हो? जब तुम अपनी आत्म के स्टेज में टिकते हो तो अनेकों के संग के रंग में तुम्हें सेवाधारी बन करके आना पड़ता है या नहीं आना पड़ता है? आना पड़ता है। फिर नियम बना हुआ है, एक आत्मा ऐसी है सुप्रीम सोल जो संग के रंग में नहीं आती है और बाकी सब संग के रंग में आते हैं। उन संग के रंग में आने वालों में तुम सबसे जास्ती संग के रंग में आते हो या और धर्म की आत्माएं ज्यादा संग के रंग में आती हैं? हाँ, और धर्म वाली आत्माओं का जो फॉलोअर्स होते हैं वो लिमिटेड हैं। और है हाँ, तुम्हारा जो विश्व पिता है उसके फॉलोअर्स सारी दुनिया की सभी आत्माएं। झाड़ के चित्र में देखो ऊपर कौन बैठा है? कौन बैठा है? है शंकर बैठा है। आत्माएं नीचे से ऊपर जा रही है, जा रही है ना? कोई आत्मा नीचे रह जाएगी? है 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उन सबको वापस लेकर जाएगा या कोई को छोड़ देगा? है किसकी याद में ले जाता है? है अरे शिव बाप की याद में ले जाता है। तो जो शिव बाप की याद में ले जाने वाला है वो सबका खिवैया गाया हुआ है। क्या? एक का खिवैया नरक की दुनिया से निकाल करके परम धाम शांति धाम जो ऊंचे से ऊंचा धाम कहा जाता है वहां ले जाने वाला। तो ऐसा ऊंचे से ऊंचे धाम में ले जाने वाला खिवैया हुआ ना? है खिवैया हुआ। खिवैया जो है वो इस सृष्टि में सबके संग के रंग में आने वाला है या लिमिटेड के संग के रंग में आने वाला है? है? सबके संग के रंग में आने धर्म पिताएं अपने धर्म के फॉलोअर्स को उठाएंगे या सारी दुनिया को उठाएंगे? है? अपने धर्म वालों को उठाएंगे। तो तुम बच्चे विश्व कल्याणकारी, बाप के बच्चे विश्व कल्याणकारी। तुम अपना कल्याण नहीं देखते हो, है? तुम्हारा तो कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाने को नहीं रह गया। क्या तुम बच्चे जब तुम्हारे अनेक जन्मों के पार्ट खुलेंगे, तुम अपनी आत्मिक स्थिति को पहचान जाएंगे कि हमारी आत्मा का मन का कौन से नंबर में है, तो तुमको पता लगने लगेगा इस 84 के चक्र में कौन कौन से जन्म में हमने कौन कौन से पोशाक धारण करके पार्ट बजाया है। राजा का पार्ट बजाया है, रानी का पार्ट बजाया है, दास दासी का पार्ट बजाया है, साहूकार का पार्ट बजाया है। पता चलेगा या नहीं पता चलेगा? है? पता चलेगा। जब पता चलेगा तो तुम सब अपने अपने पार्ट से खुश हो जाओगे। क्या एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो अपने पार्ट से खुश न हो जाए? प्रसन्नता आ जाएगी। तो देखो, दाना माने बीज, मन रुद्रमाला के मणके अपने को खाक में मिलाए देते हैं। खाक में मिलाने का मतलब क्या हुआ? जैसे अव्यक्त वाणी में बोला है, अब देखेंगे राख कौन बनते हैं और कितने बनते हैं, और कोटों में से एक, लाखों में से एक कौन निकलते हैं, कैसे? अपने देह अभिमान को राख बनाने वाले। कैसे बनता है राख? जो भी तन है, जो भी मन है, मन की संकल्प शक्ति है, जो भी धन है, जो भी समय है, आज की दुनिया में सबसे जास्ती वैल्यू किस चीज की है? समय की। तो जो भी समय हमें मिला हुआ है और जो भी संबंधी मिले हुए हैं, और इस जन्म में जाने कितने लोगों से संपर्क किया है, जिनसे संपर्क किया है वो हमारे जानकार हैं या नहीं है? हैं? उनसे जब हम मिलेंगे तो उनको समझा बुझा करके उनकी सारी ताकत, संबंधियों की, संपर्कियों की, तन की, धन की, ईश्वरीय सेवा में लगाने लायक बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? हैं? बना ही सकते हैं। तो अगर ये सारी शक्तियाँ जो हमारी आत्मा के साथ इस जीवन में मिली हुई हैं, उनको यज्ञ कुंड के, जिसे यज्ञ किसे कहा जाता है, यज्ञ माने सेवा, विश्व सेवा को ही यज्ञ कहा जाता है, उस विश्व सेवा के कुंड में हम स्वाहा कर दें। क्या? स्वा? हा माने इस आत्मा का जो भी हमारा अपना है, स्व माने अपना, क्या क्या है? तन है, धन है, मन है, समय है, संपर्क है, संबंधी है, वो सारी शक्तियों की बाजी उस यज्ञ कुंड में, सेवा कुंड में स्वाहा कर दें। तो यज्ञ कुंड में क्या बचता है? है? राख बच जाती। लोगों ने शंकर जी के शरीर में राख लगाना शुरू कर दिया। अब उस राख की बात नहीं है, क्या हड्डी हड्डी सेवा में स्वाहा करना, माना ये शरीर की जो भी हड्डियां हैं वो लकड़ी के मुआफिक हैं, इनसे हम ऐसी सेवा लें, अथक सेवा, ये राख बन करके रहेगा तो क्या होगा, उस राख में इतनी ताकत होगी कि इस दुनिया को जो पुरानी दुनिया है दुखदाई, पांच तत्वों वाली, उस पुराने पांच तत्वों को भी भस्म करके नई दुनिया तैयार कर देगी, सुखदाई फूलों वाली। देवताएं सुखदाई होते हैं या दुखदाई होते हैं? सुखदाई होते हैं। तो तुम एक एक बच्चों में जो भगवान बाप के पक्के सूर्यवंशी बच्चे हैं उनमें इतनी ताकत है, इतनी कि तुम सारी दुनिया को क्या बनाते हो, नरक से स्वर्ग बनाते। बाकी ऐसे नहीं है कि अकेला चना भाड़ फोड़ेगा, फोड़ेगा नहीं, अकेला शिव ज्योति बिंदु फुदुक 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 करता रहे, नई दुनिया स्थापन हो जाएगी है? नहीं, तुम बच्चे सहयोगी बनते हो। इसलिए बोला वो मनुष्यों की बनाई हुई गीता में भी बोला कि भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो आत्माओं को अपना अंग बनाते हैं। कैसा अंग? अनेक बाहु, बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, क्या भगवान को अनेक नेत्र हो जाते हैं। तो तुम बच्चे भगवान के क्या बनते हो? नेत्र बन जाते हो। जो भी दुनिया में कहीं भी कुछ भी कमजोरी देखी, जो भी अच्छा बुरा देखा, वो किसको अर्पण करते हो? हैं? भगवान बाप को पूरा अर्पण कर देते हैं। कि छुपा के रखते हो? हैं? कोई कोई होते हैं छुपाते भी हैं, और बहुत कुछ हुआ तो अपने संगी साथियों को बता देते हैं, अपने देह के संबंधियों को बताते हैं, अपने दिल के दिलावरों को बताते हैं, लेकिन भगवान को नहीं बताते। लेकिन तुम बच्चे तो राख बनने वाले बच्चे हो, तो तुम्हारा तो ये फर्ज है कि तुम चाहे बाप की आंखों के रूप में हो। फर्स्ट क्लास बाप की आंखें कौन है पता है? हैं? हाँ, राम और कृष्ण, राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा, फर्स्ट क्लास आंखें। तुम बच्चे मेरे नैनों के नूर हो, क्या हो? नैनों के नूर हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं तुम बच्चों को अपनी नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। कैसे बिठा के ले जाऊंगा? नैनों पर बिठा के ले जाऊंगा। जब तुम शांति धाम बाप के घर में जावेंगे उस समय तुमको नैनों पर बिठा के ले जाऊंगा। इसका मतलब तुम इतने भारी भरकम हो, नैन इतने छोटे हैं, कैसे बैठाऊंगा? हैं? आत्मिक स्थिति तुम्हारी बनेगी। कैसे बनेगी? अपने पुरुषार्थ से नहीं बनती है। क्या? कैसे बनती है? बाप ने बोला है अंत में बाप तुमको इतनी तीखी दृष्टि देंगे कि तुम अपने को इस दुनिया में पतित दुनिया में ठहरा ही नहीं सकेंगे। क्या? इस पतित दुनिया से तुम्हारी आत्मा फट से ऊपर उड़ेगी। तुम्हारी आत्मा, उनकी आत्मा नहीं, किनकी है? जो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं उनकी आत्मा नहीं। क्यों? तुम्हारी आत्मा ऊंची क्यों उड़ेगी ऑटोमेटिक? क्योंकि बाप की याद में तुम्हारी शक्ति से हाँ, तुम्हारे अंदर तो वो प्यार होना चाहिए बाप के प्रति, वो श्रद्धा होनी चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए, वो निश्चय होना चाहिए। निश्चय बुद्धि विजय थे, अनिश्चय बुद्धि है? अनिश्चय बुद्धि के लिए क्या बताया? हाँ, विनश्यते। उनकी आत्मा का पद नीचा हो जाता है। तो देखो, तुम राख बनेंगे तो नई दुनिया के गार्डन्स तैयार कर देंगे। कितना बड़ा काम कर देते हो तो बताओ। जब तुम राख बनते हो तब तुम औरों के संग के रंग में आते हो या नहीं आते हो? है? संग के रंग में आवेंगे तो तुम क्या कोई भगवान हो जो तुमको संग का रंग नहीं लगेगा? लगेगा या नहीं लगेगा? है? लेकिन अपने संग के रंग की परवाह न करके तुम्हारे अंदर भावना क्या है? श्रेष्ठ भावना है, विश्व कल्याण की भावना है या अपने कल्याण की भावना है? है? अपने कल्याण की तो भावना तब तक है जब तक हम आत्मिक स्थिति में नहीं टिके, देहभान में है तो देह का होना रहता है। क्या सबसे जास्ती प्यार इस संसार में किससे होता है? अपनी देह से प्यार होता है। तो वो देह का प्यार भी खत्म, सारा प्यार किसके ऊपर है? शिव बाप के। और शिव बाप क्या है? है? क्या है शिव बाप का नाम? क्या है? है? कल्याणकारी नाम है ये तो। है? शिव बाप का नाम क्या है? अरे बोल पे भी जाते हैं तो भी नहीं बताते। शिव बाप का नाम क्या है? एक ही नाम है, है? शिव। शिव माने कल्याणकारी। तो ये नाम काम के आधार पर पड़ा है कि ऐसे ही पड़ गया है? काम के आधार पर नाम पड़ता है। बाप ने ऐसा काम किया है और तुम बच्चों में प्रवेश करके कराया है। कैसे? बाप देखते हैं हिम्मत है बच्चे, मदद दे बाप। जो बच्चे हिम्मत करते हैं ईश्वरीय सेवा की उन बच्चों को बाप मदद जरूर देते। मुकर्रर रूप से प्रवेश तो एक में ही करते हैं लेकिन हर बच्चे में उनकी हिम्मत के अनुसार उनमें प्रवेश करके उनको मदद जरूर देते हैं। जैसे कोई बच्चा है, कोई समझने वाला बहुत होशियार पावरफुल आ गया और बच्चा कमजोर है, समझा ही नहीं सकता लेकिन हिम्मत तो की। तो ऐसे हिम्मतवान बच्चों में बाप प्रवेश करके दृष्टि की पावर भी देते हैं। क्या? वाइब्रेशन की भी पावर देते हैं, वाचा की पावर भी देते हैं और उस वाचा की पावर से उस आत्मा को उठा देते, ज्ञान में चलने लग पड़ती, रेगुलर बाप का बच्चा बन जाती, पक्का पुरुषार्थी बन जाती। लेकिन जो निमित्त बनता है साकार, उसको ये अहंकार आता है मैंने इस आत्मा को निकाला। होता है कि नहीं? तो ये अहंकार जो देह का आता है, ये देहंकार भी पूरा खत्म होना चाहिए। मैंने नहीं किया, क्या मेरे से बाप ने कराया।
ये
देह अहंकार खत्म करना पड़ेगा। कहाँ तक? बाप ने बताई दिया है, मैं तुम बच्चों को मच्छरों सदृश ले जाऊंगा है। मच्छर की कोई वैल्यू होती है? है दुनिया में ऐसा प्राणी कौन सा है? छोटे बड़े प्राणी तो बहुत होते हैं, पशु पक्षी है, कीटाणु मनुष्य देवता है, राक्षस होते तो हैं बहुत, लेकिन ऐसे प्राणी कौन हैं जो दुनिया में सबसे जास्ती तादाद में पैदा हो जाते हैं? है मच्छर, जिनकी कोई वैल्यू नहीं, यूं आके बैठा पट से मार दिया। तो देखो कोई वैल्यू हम समझते हैं, हैं? कोई वैल्यू नहीं, तो ऐसे बना करके ले जाऊंगा। कैसे? मच्छरों सदस्य तुम्हारे देह अभिमान को छुड़ा करके ले जाऊंगा। अब देखो ये मच्छरों सदस्य ले जाएंगे तो हमें प्यार करते हैं या हमको मच्छर बना दिया है?
प्यार करते
हैं। हाँ, आत्मा को प्यार करते हैं। आत्माओं का बाप है, देह का बाप तो नहीं है। तो बच्चों को पक्का समझना चाहिए, जैसा बाप वैसा बच्चे। बाप कल्याणकारी तो हम बच्चे भी कल्याणकारी। बाप साकार मुकर्रर रथ में आकर के राख बनता है तो हम बच्चे भी राख बन जाते हैं। और ऐसे राख बनने वाले बच्चे नई दुनिया तैयार करते हैं। उन बच्चों की ये शिफ्ट बताई। क्या क्या शिफ्ट बताई? कि संगम युग में भी वो चरती कला वाले हैं और सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक भी जो पार्ट बजाते हैं, उन पार्ट बजाने वाली आत्माओं में वो उनके मुकाबले ऊंची स्टेज वाले ही रहेंगे या नीची स्टेज वाले रहेंगे? हैं? मान लो कलयुग के मध्य में आकर के महाराणा प्रताप हुआ, थोड़ी सी सेना हजारों की तादाद में, और अकबर की सेना लाखों की तादाद में, कौन भाग खड़ा होता है? हैं? अकबर की सेना भाग खड़ी होती है, अकबर भाग खड़ा होता है। तो देखो ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? हैं? तुम बच्चे अंतिम जन्म तक भी ज्यादा से ज्यादा इस सृष्टि का सुख भोगने वाले बच्चों में से हो। यहां तक बताया मुरलियों में कि कोई कोई बच्चे तो 82-83 जन्म तक भी सुख में रहते। चलो कोई कोई बच्चों की बात छोड़ दो, सामान्य रूप से क्या बताया? सामान्य रूप से भी बताया कि तुम बच्चे श्रेष्ठ सुख भोगने वालों में जो सामान्य कैटेगरी है, जिनकी तादाद ज्यादा होती है, वो दुनिया का 3/4 सुख भोगते हैं और धर्म वाले आधा सुख और आधा दुख भोगते हैं। तो ज्यादा फायदे में कौन रहे? हैं? ज्यादा फायदे में वो बच्चे रहे जो अपने ही परवाहन करके अपने तन की मन की धन की समय संपर्क अपनी हड्डियों की भी परवाहन करके हड्डी हड्डी ईश्वरीय सेवा में क्या बना देते हैं? राख बना देते हैं। ऐसे बच्चे मेरी रूहानी मिलिट्री बनती है। कैसी मिलिट्री? रूहानी मिलिट्री। द्वापर कलयुग में भी ऐसी रूहानी मिलिट्री पार्ट बजाती रहती है। और इस रूहानी मिलिट्री का मार्शल किसको बताया? हैं? शंकर को। यहाँ शूटिंग पीरियड में रूहानी मिलिट्री का मार्शल शंकर है, तो जहाँ युद्ध होते हैं हिंसक, उन हिंसक युद्धों में उन जिस्मानी मिलिट्री का जो रूहानी मिलिट्री वाले होते हैं वो आत्माएं वहां होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। वहां भी होने का मार्शल कौन होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। तो जो मार्शल होगा वो अनेक जन्मों में ऐसा पार्ट बजाता है जहां हिंसक युद्ध होते हैं द्वापर कलयुग में, के उस मिलिट्री को कोई जीत नहीं सकता। इसलिए शास्त्रों में गायन है एक रूप का, और वो प्रवृत्ति मार्ग का रूप है कि उसको दुनिया में जितने भी युद्ध उसके साथ हुए उन युद्धों में सदैव उसकी जीत ही हुई है, कभी भी हार नहीं हुई। कौन है वो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का युगल? है लक्ष्मी नारायण। क्या लक्ष्मी को क्यों लगा दिया? लक्ष्मी युद्ध करेगी क्या? है नारायण। लेकिन नारायण के साथ लक्ष्मी का नाम क्यों जोड़ा गया? है दुनिया के सारे कार्य कैसे होते हैं? प्योरिटी से होते हैं। देखो जालंधर राक्षस का मिसाल है। जालंधर राक्षस की पत्नी जो तुलसी माता का अवतार कही जाती है, वो पत्नी बहुत पावरफुल सतीत्व वाली थी। तो जब तक वो पत्नी उसके पक्ष में रही जीवन में, तब तक जालंधर राक्षस को कोई हरा नहीं सका। ऐसे ही ज्यादा पावरफुल दुनिया का कोई शख्सियत है या नहीं है जो जन्म जन्मांतर प्योरिटी को मेंटेन करती हो? है कौन? लक्ष्मी। उसका लक्ष्य है, मी माने मुझको, ये लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? है दुनिया की सबसे पावरफुल शक्ति को धारण करने वाली। पावरफुल शक्ति क्या हुई? है प्योरिटी। कैसी प्योरिटी? वरो शंभु न तो रहो कुंवारी। क्या करूं? या तो शंभु आत्मा को वर्णन करूंगी, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। पुरुष का जन्म लूंगी तो सन्यास धर्म में आऊंगी, नारी का जन्म लूंगी वर्ण करूंगी तो शंकर को करूंगी, नहीं वर्ण करने को मिलेगा तो जीवन भर कुंवारी रहूंगी। ऐसी भी कोई आत्मा 500-700 करोड़ के बीच में हो सकती है या नहीं हो सकती है? हैं? ये तो वैरायटी की झाड़ है। एक तरह की आत्मा है क्या? हैं? अनेक प्रकार की आत्मा है, उनमें एक आत्मा ऐसी भी है। कैसी? कि ऐसे सतीत्व व्रत को धारण करती है कि संगम युग में भी वो नारायण वाली आत्मा सदैव विजयी होती है। हर युद्ध में कभी भी हार नहीं खाती। तो देखो नारायण के साथ किसका नाम गाया हुआ है? है लक्ष्मी का नाम गाया हुआ। द्वापर कलयुग में भी राजाएं युद्ध में जाते थे, खासकर भारतीय राजाएं, तो उनको ताकत कहां से मिलती थी? है है हाँ बोरानिया जिनका गायन है सात स्त्री में कि पद्मिनी जब जौहर किया तो उसके साथ कितनी रानियों ने जौहर किया है 16,000 ने जौहर कर दिया। इतनी बड़ी संगठन की पावर, जहाँ प्योरिटी होती है भाई भाई यूनिटी होती है, प्योरिटी नहीं तो यूनिटी भी नहीं। देखो बाप ब्रह्मा में आते हैं, नरक को स्वर्ग बनाने का काम पूरा होता है, है? नहीं होता। ये त्रिमूर्ति में से पहला पार्ट है, उसके बाद ब्रह्मा की मूर्ति के बाद कौन सी मूर्ति है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर है शंकर द्वारा विनाश। तो देखो शंकर वाली आत्मा जब ब्राह्मणों की दुनिया में उदय होती है तो ब्राह्मणों की दुनिया का विघटन होना शुरू होता है या नहीं होता है, है? ब्राह्मणों के मन में जो ह्रास के संस्कार है, नीचे गिरने के जो संकल्प पैदा होते हैं, कमजोरी से पैदा होते हैं या ताकत से पैदा होते हैं, कमजोरी से पैदा होते हैं, और ज्ञान को बल कहा जाता है। जिनमें ये अनुभव हो जाता है कि मेरे अंदर ज्ञान कम है और उनमें ज्ञान ज्यादा है, तो ज्ञान के आधार पर वो आत्माएं ज्ञान बाणों से घायल होती हैं या नहीं होती हैं? हैं? घायल होती हैं तो कमजोर हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं तो पुरुषार्थ कमजोर करेंगी या पावरफुल पुरुषार्थ करेंगी? कमजोर पुरुषार्थ करने लग पड़ती है, उनमें वो ताकत नहीं रहती। तो बताया है कि ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, भगवान को ज्ञानी बहुत प्यारा है।